नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बदलाव का आगाज। लोगों को समझना जरूरी है कि हर इंसान के अधिकार होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत या किसी और लिंग समूह से। हिंसा किसी भी रूप में सही नहीं है और इससे लड़ने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। आइए यशस्विनी जी के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जेंडर हिंसा से जो पीड़ित हैं उनके लिए कानून की किताब में क्या क्या कदम है और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के मदद करने में अपना योगदान दे रही हैं। यशस्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच।
यशस्विनी जी, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि जेंडर आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए उनके न्याय और सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं जो उन्हें मदद कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि 2005 का जो घरेलू हिंसा का हमारा जो कानून है, इसके ऊपर थोड़ा और जागरूकता हमें फैलाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या उनका अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन लेके कोई आता है, कंप्लेन करने के लिए एक तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाना चाहिए और ये सिर्फ इसी एक्ट के लिए स्पेसिफिकली इनको अपॉइंट किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में, हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है। तो ये आपको किस तरीके का मदद कर सकते हैं, एक तो पहले अगर आप जाएंगे प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन में, अगर आपको पसंद ना हो वहां पे जाके अपना बात रखने का, तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है पूछ सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफिसर कभी कभी महिला होती है, कभी कभी पुरुष भी हो सकते हैं, ज्यादातर महिला ही होती है जो अफसर होती है, जो आपसे आराम से बात करके आपका पूरा बात सुनेगा और उसके बाद आपको सपोर्ट देगा, आपको कंप्लेन लिखने में मदद करेगा। आपको फिर फ्री लीगल एड के बारे में जो मैंने कहा कि जिले कोर्ट में रहते हैं उन तक पहुंचाने में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर मदद करेंगे। और आप मान लीजिए आपको तुरंत घर छोड़ना पड़ रहा हो आपके बच्चों के साथ या आपको अकेले, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास वेरीफाइड शेल्टर होम्स के भी ठिकाना या नंबर होते हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। एक और चीज ये घरेलू हिंसा में होता है जो FIR के पहले होता है, जो होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ये पूरे FIR तो नहीं है, लेकिन ये एक पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। वो कहते हैं कि क्या क्या हुआ था, डिटेल में आप बताते हैं किस तरीके से आपके साथ जुर्म हुआ है और आप किस तरीके से बाहर आए हो और आपको किस तरीके का मदद चाहिए। ये जो आप लेते हो ये तब आप पुलिस में जाके आप देंगे, तो उस आधार पे FIR हो सकता है।
यशस्वी जी, समुदाय को जेंडर आधारित हिंसा से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को बेहतर समझने और उनमें सम्मिलित होने के लिए कैसे मदद मिल सकती है?
तो जैसे मैंने कहा कि सरकार की तरफ से या हमारे जो अधिकारी है प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मदद का जगह है। इसके अलावा NGOs जो है, आपके आसपास के कलेक्टिव्स या संस्थाएं जो है, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी पीड़ित है या जो भी मदद कर रहे पीड़ितों का, कुछ ऐसे अधिकार है जो उनको याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक अधिकार जो सबसे पहले है ये है कि आप जब कंप्लेन करोगे, आपको कंप्लेन निडर होके करना है, क्योंकि आपके पास एक राइट टू प्राइवेसी है जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये फंडामेंटल अधिकार दिया है कि हमारा जो प्राइवेसी का राइट है वो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके ऊपर लोग कुछ ताने मारेंगे कि आपका नाम खराब हो गया, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप किसी को मदद भी कर रहे हो तो ये उनको समझाइएगा कि आप उनके लिए कंप्लेन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका नाम भी खराब हो, आपका जो आइडेंटिटी है वो सुरक्षित है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर घरेलू हिंसा या किसी भी रूप की हिंसा के शिकार है तो आपको अस्पतालों में जाके फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है। बट ये है कि अगर आप जाएंगे तो आपको पुलिस को या अस्पताल से पुलिस को खबर करना होगा कि ऐसी एक घटना हुई है। कानून हमें कहता है कि ये सारे मुद्दा लंबा खींचने वाला नहीं है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। FIR तो सभी को दर्ज करवाना है, कोई भी दर्ज करवा सकता है। अगर कोई FIR लेने से मना कर दे तो आप उन ऑफिसर के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास।
और आखिरी सवाल, यशस्वी जी, वो कौन कौन से संगठन या मदद के साधन हैं जो जेंडर आधारित हिंसा के मामलों में लोगों को कानूनी प्रक्रिया में सहायता करते हैं?
बहुत सारे ऐसे संस्था है जो मदद कर सकते हैं, अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह में ऐसे हो रहे हैं जो आपके मदद मिल सकता है। हम दिल्ली की बात करें तो शक्तिशाली है, एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्था है, जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। तो NCW का एक हेल्पलाइन भी है, जो आप देश के कहीं से भी कर रहे हो फोन या कहीं भी आपको समस्या हो रही है, आप वहाँ पे जाके मदद की मांग कर सकती है। इनका नंबर है 1091, ये नेशनल हेल्पलाइन है। 1091 में आप अगर कॉल करेंगे तो आपको इमीडिएटली हेल्प मिल सकता है सेंट्रल पुलिस के द्वारा। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये भी एक हेल्पलाइन चलाते हैं, जो है 7827170170। इस नंबर पे आप काम करोगे तो आपको उसके ऊपर भी हेल्प मिलेगा। तो लिस्ट तो बहुत लंबा है, सबसे जरूरी बात है कि 1091 या पुलिस का जो नंबर है 100, इसलिए आप कॉल सबसे पहले कीजिएगा अगर आपको बाहर जाने का मौका ना मिले तो।
इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशस्विनी जी।
थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डरिए नहीं, अगर आपको लगता है कि आगे कदम आप उठाना चाहते हो तो हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
साथियों, जेंडर हिंसा के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जब लोगों में बढ़ेगी तभी समाज में बदलाव आ सकता है। आप हमें बताइए कि आपके विचार में समाज में जेंडर हिंसा के खिलाफ बदलाव के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जेंडर हिंसा के खिलाफ कानूनी लड़ाई में कानून कितना महत्वपूर्ण है? क्या आपने कभी जेंडर हिंसा के खिलाफ किसी की मदद की है? अपने अनुभव और विचार हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार
साथियों, अगर आपको ऐसे ही और भी कार्यक्रम सुनने हैं तो तैयार है मोबाइल वाणी का एक और मंच आपके मनोरंजन और जानकारी की डोज को बढ़ाने के लिए। तो इस संदेश के चलते दौरान अभी दबाएं नंबर 9 का बटन और आ जाइए हमारे साथ।